ಯಶೋಧಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋಧಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋಧಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋಧಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋಧಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋಧಾನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव హరినామ సంకీర్తనకి గ్రంథర శ్రీమద్ భాగవతంకి శ్రీల ప్రభుపాదకి నితాయ గౌర ప్రేమానందే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః హరే కృష్ణ ఆప్ సబ్కా స్వాగత్ హే హమారే భాగవతం క్లాస్ మే ఆజ్ హమ్ భాగవతం కే చతుర్థ స్కంద కే ఛఠే అధ్యాయ కే 21 నంబర్ శ్లోక్ కే ఊపర్ చర్చా కరేంగే पहले हम श्लोक दोहराएंगे पंच शीर्षाहिना गुप्ताम प्रतिहारेन सर्वतः अन्वेषमान मृषभम अप्रौढ़ाम कामरूपिनीम पंच शीर्षाहिना गुप्ताम ప్రతిహారేణ సర్వత అన్వేషమానాం ఋషభం అప్రౌఢాం కామరూపిణీం పంచశీర్షాహినా గుప్తాం ప్రతిహారేణ సర్వత అన్వేషమానాం ఋషభం అప్రౌఢాం కామరూపిణీం చాహినా గుప్తాం ప్రతిహారేణ సర్వతా అన్వేషమానాం ఋషభం అప్రౌఢాం కామరూపిణీం శబ్దార్థ అర్థ ఔర్ తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ కి ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాద్ కి పంచ పాంచ్ శీర్ష శిర్ అహినా సర్ప ద్వారా గుప్తాం రక్షితః ప్రతిహారేన అంగరక్షక్ ద్వారా సర్వతః చారో ఓర్ అన్వేషమానాం ఖోజ్ కర్తీ హుయీ ఋషభం పతి अप्रौढ़ाम भोली भाली किशोरी कामरूपिनीम अत्यंत आकर्षक अर्थ वह स्त्री पांच फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। वह अत्यंत सुंदर तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यंत उत्सुक प्रतीक हो रही थी। तात्पर्य जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में पांच प्रकार के वायु प्राण अपान व्यान समान तथा उदान कार्य करते हैं। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती है। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है पति के तलाश में थी, इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए यह अप्रौढ़ाम तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। भौतिक भोग का अर्थ है रूप रस गंध शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका सुबह के भागवतम कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव से और सभी वैष्णव से आशीर्वाद की याचना करता हूँ, खास करके वृंदावन प्रभु की आज्ञा से परशुराम प्रभु श्री राम नित्याय प्रभु। मैं कुछ जो सुना है अपने वरिष्ठों से बोलने का प्रयास करूँगा। तो ये जो पुरंजन का आख्यान नारद मुनि बता रहे, तो आज ये श्लोक में बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक से ही उन्होंने बुद्धि का वर्णन किया है। तो बुद्धि को एक स्त्री की एक रूपक के माँ इसलिए करके वो बता रहे हैं। तो बुद्धि के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे हम। जैसे इस श्लोक इस अध्याय का जो 25वां अध्याय का पहला श्लोक है, उस श्लोक में नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद है उसको बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इतना अच्छा सवाल है वो कि राजा उसको नारद मुनि उसको चेकमेट कर रहे थे। कभी कभी हमको पता नहीं चलता है कि हम क्या बोलते हैं, लेकिन नारद मुनि एकदम सुंदर सवाल उनको पूछते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा, एक मिनट मैं श्लोक निकालता हूं। हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राचीन परिषद जो है वो पूरी तरह से यज्ञ करने में लगा था, इतना कि उसने सब जगह वो कुशक रास लगाया था पूरे उसके राज्य में, इतना तो इतना सकाम कर यज्ञ कर रहा था वो। और नारद मुनि आके उसको एकदम परफेक्ट सवाल पूछते, क्या आप इतना यज्ञ कर रहे हैं तो जीवन का उद्देश्य है कि हमारे जीवन के दुख को मिटा देना और सुख को प्राप्त करना, लेकिन इससे कुछ होने वाला दोनों नहीं होने वाला, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसा पूछा नारद मुनि। तो जब मैंने ये सवाल पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा था मुझे कि कभी कभी जैसे प्रभुपाद का भी एक पास टाइम है, प्रभुपाद को उनके सब शिष्य लेके गए एक दिन प्रचार के लिए, और वो सब लोग एक आदिवासी लोगों के पास लेके गए, वो लोग वस्त्र भी नहीं पहनते थे, और ऐसे ही प्रभुपाद को बिठा दिया उनके सामने, सब लोग बैठे थे और प्रभुपाद सामने बैठे थे। तो प्रभुपाद ने इतना सुंदर शुरुआत किया उनका कि आदमी सोचने लगता है। प्रभुपाद बोले कि आपको बहुत आनंद आया आ रहा होगा कि आप ऐसे वस्त्र त्याग कर जीवन जी रहे, आपको कुछ बंधन वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप ये हमारे आत्मा के ऊपर भी ये शरीर एक वस्त्र है, अगर आप इसको त्यागोगे तो इससे और ज्यादा आनंद आएगा, ऐसा प्रभुपाद ने बोला। तो बहुत बढ़िया है ऐसे, एक्चुअली शुद्ध भक्त को भगवान बहुत अच्छा प्रेरणा देते कि किस वक्त क्या बोला जाए, इससे सामने वाला तुरंत सोचने लगता है। तो प्रभुपाद हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, अभी मुझे खुद अनुभव, एक दिन कुंज बिहारी मंदिर में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तब किचन में सेवा करता था मैं, और इतवार के दिन हम बाहर स्टॉल लगाते थे, तो एक माता जी आई और उन्होंने योगा की पूर्णता पुस्तक लिया और मुझे पूछा इसमें क्या है, तो मैंने एकदम इतना परफेक्ट उत्तर दिया, तो उन्होंने बुक लिया, लेकिन मैं बाद में सोचने लगा मैंने कैसे बोल दिया ये, मैंने कभी सोचा नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये भगवान बुद्धि देते हैं हमको कभी कभी, क्योंकि भगवान को वो जीवात्मा के उद्धार करना है, तो ऐसा बुद्धि देते हैं, ऐसा आपके मुख से निकल जाता है कि वो आदमी कन्विंस हो जाता है। आप सबको भी अनुभव होगा, ऐसा आता है ऐसा अनुभव, तो इस तरह से। तो भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो इस तरह से हमारे इस साल हम बस पार्टी में गए थे क्या नासिक, नासिक जिले में, तो उधर भी बहुत अच्छा अनुभव आया हमको, एकदम अलग बस पार्टी थी, क्योंकि हमारे अपेक्षा से बहुत ज्यादा हमको भगवान ने यश दिलाया। तो मैं इसके थोड़ा उदाहरण दूंगा, क्योंकि बुद्धि की बात चल रही है, तो कैसे हमारे बस पार्टी को भगवान ने अलग अलग जगह टर्निंग मोड़ दिया। हम पहले जा रहे थे, नासिक जिला है उसमें, दिंडोरी करके तालुका है उसमें जाने वाले थे, पूरा हमने तहकीकात कर दिया, जू में फोन कर दिया, दो बस पार्टी जू के उनको फोन किया कि आप नासिक में गए क्या, कौन से तालुके में जाते हैं, किधर कर, पूरा जानकारी की हमने, निगड़ी की बस पार्टी सब जगह पूछा। तो बाद में तय हुआ कि दिंडोरी जाना है, इस हिसाब से हम निकले थे 10 तारीख को, जैसे ही कुंज बिहारी का रौप्य महोत्सव साजरा हो गया उसके बाद हम निकले थे। तो हमारा प्लान था 10 बजे निकलने का, मैंने पूरा प्लान करके रखा था कितने बजे जाना है, यहाँ से कुंज बिहारी में जाएंगे, उधर कुक लोग सामान लोड करेंगे, लेकिन इसमें इतना देर हो गई। तो हमारा प्लान था दिंडोरी वो तालुका वो शहर है उसमें जाने का, लेकिन हम नहीं जा पाए, हम अपना नासिक रोड में जाएंगे तो एक नांदुर सिंगोटे करके गांव आता है, वो गांव तक ही पहुंच गए। तो सोचने क्या करना है, तो इधर कन्हैया ठाकुर के काउंसलिए उनके घर में रहे, हम ब्रह्मचारी कुंज बिहारी में उनके घर में रहे। तो अब एक दिन तो ट्रैवलिंग का गया, मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जाने के बाद फिर हमने सोचा कि अब इधर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, हालांकि वो एरिया सब हमने किया था खुद। तो फिर रेवती नंदन प्रभु ने क्या किया, हम सीधा जाने वाले थे ऐसे, सीधा दिंडोर जाने वाले थे। तो रेवती नंदन प्रभु ने क्या किया, बोले कि हम ऐसे जाएंगे घूम के। तो 3 तालुके क्रॉस करके गए हम, निफाड़, दूसरा है चांदवड़ और नासिक, ऐसे तालुके क्रॉस करके उधर तक गए हम, और 10 दिन के बाद वो दिंडोरी पहुंचे, 10 दिन के बाद। लेकिन तब तक हमारे 15 भागवतम सेट और 1000 से ज्यादा किताब गए थे। और जब हम दिंडोरी में पहुंचे तब हमको चला ये पूरा पूरा का पूरा एरिया पूरा आदिवासी एरिया है, और उधर घर भी देखेंगे आप तो अभी कोई गया होगा तो अभी तक ऐसे पुराने जमाने के घर है, लकड़ी के घर है, उसको मट्टी लगाते हैं और गोबर से उसको ये करते, तो ऐसे घर थे उधर। अगर हम डायरेक्ट उतर जाते थे डायरेक्ट तो प्रस्ट्रेट हो जाते थे, लेकिन भगवान ने कैसा बुद्धि दिया, रेवती नंद ने ऐसा पूरा 3 तालुके क्रॉस करके हम ऐसा राउंड मार के उधर गए। बाद में फिर हमको पता चला कि सचमुच भगवान की कृपा से इतना ये हो गया, नहीं तो आगे कुछ होता नहीं, क्योंकि उसके आगे भागवत सेट वितरित नहीं हुआ। और जब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, जब हम निफाड़ तालुके में बुक डिसीशन कर रहे थे तो उधर वडनेरे भैरव, ये चांदवड़ में आता है गांव वडनेरे भैरव गांव, तो उधर वडनेरे भैरव बड़ा गांव है वो, तो उधर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे प्रसाद, हमारा दोपहर का प्रसाद हो गया और उधर आए हम शाम को 5:30-6 बजे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक आधा घंटा गाड़ी रुकाया उधर, और बाद में हम टर्न मार दिया उसका, बस रिवर्स घुमा के बाहर जाने वाले थे, तो एक डीओटी आया, डीओटी नहीं एक आदमी आया, उधर ही उसका दुकान था, वो आ रहे आप किधर जा रहे हैं आप लोग, तो रेवती नंद बोले हम जा रहे हैं अभी हो गया, बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे जा सकते, आप इधर जाओ ये गली में जाओ, ये मेन गाँव है मुख्य गाँव है इधर जाओ। तो रेवती नंद बोले गाड़ी नहीं जाएगा हमारा बस, बोले आप चिंता मत करो पूरा बस जाएगा आपका, बस के साथ दूसरा गाड़ी भी जाएगा, इतना बड़ा गली है, जाओ आप अंदर जाओ। शुरुआत में थोड़ा सा था तो उसने फोर्सफुली गाड़ी को टर्न मारने के लिए बोला, नहीं वो जाओ आप इधर, तो अंधेरा पड़ा था सब समझ में नहीं आ रहा था गांव, तो हमने फिर टर्न मार दिया, तो वो गली इतना बड़ा था कि रात को 8:30 बजे हमारा वो गली कंप्लीट हो गया, दूसरे कोने में निकल गया। तब तक 70-80 ग्रंथ हमारे वितरित हो गए थे इतना, यानी मैं वही सोच रहा था कि भगवान ऐसा नहीं कि आपको खुद को बुद्धि देंगे, कभी कभी भगवान आपको मदद करने के लिए दूसरों को भी बुद्धि देंगे कि जाओ इसको आप जाके मदद करो, तो ये दूसरों को बुद्धि देना, तो ये 2-3 बार हमारे साथ हो गया। अब ये वडनेरे भैरव उधर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दूसरे दिन हम आ गए वापस उधर 40-50 ग्रंथ हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बाद में एक गांव में, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं, छोटा सा गांव था, तो उधर गए हम ऐसे ही प्रसाद लेके गए थे 5:30 बजे, मतलब वो उस टाइम पे कोई नहीं रहता, सब खेत में रहते, 7 बजे लोग खेत से आते, तो उधर गए अनाउंसमेंट किया, केवल एक ग्रंथ गया उधर बस, तो हम दूसरे गांव में जा रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी ने गाड़ी रुकाया हमारा, बोला तो किधर जा रहे आप, तो रेवती नंद बोले हम आगे के गाँव में जा रहे, नहीं नहीं आप रुको इधर, बोले अरे क्यों, अरे नहीं, बोले इधर कोई नहीं ले रहा है, ये ग्रंथ गया हमको आगे ले गाँव में, बोले नहीं इधर ये दूध संकलन केंद्र है हमारा है, इधर अभी 100 लोग आने वाले आपके सब ग्रंथ जाएंगे, तो फिर भी नहीं रुक रहे थे, बोले ठीक है कितने ग्रंथ है मुझे दे दो, मैं पहले घर ग्रंथ खर्च परचेस कर दो, तो उसने 3 ग्रंथ लिए, एक भागवतम लिया, भगवत गीता लिया और कृष्णा बुक, 3 ग्रंथ लिए उसने, लेकिन बोला इधर रुको, बाद में बोला मेरे इसमें लगाओ आप स्टॉल दूध संकलन केंद्र, तो पूरे किताब लेके हम उधर स्टॉल लगा दिया, तो बाद में इतने लोग आ गए उधर, सब लोग आए आजू बाजू के गांव के, वो दूध देने आते गांव में, तो उन्होंने भी बहुत सारा उधर ग्रंथ गए हमारे, एक आधा घंटे तक थे वो केवल दूध दे के चले जाते, तो बहुत सारे लोगों ने ग्रंथ लिया। तो इस तरह से भगवान किस किस को बुद्धि देते हैं क्या हमारी मदद करने के लिए। बाद में एक पालखेड़ करके गांव है इसमें निफाड़ तालुके में ही पालखेड़, तो उसमें गए थे हम, तो उधर पूरा पालखेड़ गांव पूरा एक एक गली में घुस के हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, पूरा खत्म हो गया था ऑलमोस्ट हमारे जैसे, तो गांव के बाहर आ गए, और गांव के बाहर एक गांव को चिपक के ऐसा रास्ता था बड़ा, और उसको लेफ्ट टर्न एक राइट एंगल में एक रास्ता था दूसरे गांव में जाता था, तो उधर हमने टर्न ही किया तो 2 छोटी लड़की आई रेवती नंद के पास, अरे आप जा रहे हमारे हमारे घर में हमारे गली में ना आएंगे आप, तो रेवती नंद बोले आप किधर है आपका घर, बोले ये क्या सामने है, तो बोले कितने लोग है उधर, बोले बहुत बड़ा हमारा ये एरिया आप आ जाओ, तो लड़की के पीछे फिर 2 लोगों को भेजा, मधुकिरण प्रभु और शंकरन प्रभु को भेज दिया, तो गए अभी रास्ते में खड़े गांव खत्म हो गया, तो मुझे बोला रेवती प्रभु अनाउंसमेंट लगाओ, तो अनाउंसमेंट लगा दिया, वो फेमस अनाउंसमेंट मंडली मंडली तो वो अनाउंसमेंट लगाने के बाद लोग आने लगे वापस। और हुआ गया, वो मधुकिरण प्रभु गए थे अंदर, तो कुछ दो ना एक पति पत्नी आए बाहर, उनको भागवतम सीट लेना, तो भागवतम सीट लेके गए, रस्ते में खड़े थे हम और भागवतम सीट लेके गए, तो इतना बड़ा शौक। और उधर खड़े खड़े 50 ग्रंथ गए, जो भी गाड़ी वाला आता था रस्ते में तो रुक के ग्रंथ लेके जाता था। तो इस तरह से मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे भगवान मदद करते। और एक एकदम स्पेशल पर्सन है हमारे ब्रह्मचारी सुदामा प्रांत प्रभु, उन्होंने हाइट कर दिया, इतने भागवतम ग्रंथ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए कि वो हम उनको ही बुलाते थे जब कोई भागवतम लेने आता था। और यहाँ तक अभी तक का रिकॉर्ड है हमारा, 4 भागवतम सेठ जाते हर बस पार्टी में, 4 हाइट, इसके आगे ज्यादा से ज्यादा 5। तो हम मैं 4 लेके गया था, वो पहले 3 दिन में खत्म हो गए, तो बाद में 10 मंगाए वो खत्म हो गए, बाद में वापस 10 मंगाए वो भी खत्म हो गए। तो इतना हमको जादू चल रहा था सब। तो हुआ क्या, वो सुदामा प्राण प्रभु केवल वो भागवतम देते थे, क्या बोलते थे हमको पता नहीं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे भागवतम ग्रंथ, हमको पता नहीं। सब ट्राई मार रहे थे, अभी देखो रेवती नंदन प्रभु है वो तो भागवत कथा करते, हमारे अजय गौरांग प्रभु है वो सुंदर विषय, किसी को भागवतम सेठ वितरित नहीं हो रहा था, केवल सुदामा प्राण प्रभु करते थे, क्या बोलते थे पता नहीं है लेकिन वितरित करते थे। तो एक दिन तो एक गांव में गए हम, और गांव में गए अनाउंसमेंट लगाया, अनाउंसमेंट है 4 मिनट का, 3 मिनट में उन्होंने बोला अनाउंसमेंट बंद करो, क्या हुआ अब अनाउंस करो, क्या नाम अनाउंस करो, भागवतम सेठ लिया इन्होंने, 3 मिनट में भागवतम सेठ वितरित कर दिया उन्होंने। बाप रे हमको शौक लग रहा था, क्या चल क्या रहा है। अभी इधर शंकरान प्रभु है नहीं तो आप सोचेंगे, एक गांव में गए थे कोई किताब नहीं ले रहा, कोई किताब नहीं ले रहा था, तो वे शंकरान प्रभु हर घर में जाके आए, हम एरिया बांटते थे, इधर एक ब्रह्मचारी जाएगा उधर एक ब्रह्मचारी जाएगा, तो सब घूम के आ गए, तो लास्ट में ये गए सब जाने के बाद, तो इन्होंने बहुत सारे किताब वितरित करके आए, और सेठ के सेठ दे के आए वो, यानी जिस वो शंकरान प्रभु आके बोले अरे मैंने वो माता जी को दिखाया, मुझे बोली नहीं चाहिए आपके पास से 2 किताब लिए, कृष्णा भी लिए और वो भगवत गीता भी दिया, वो सेठ देते थे हम। तो इतना जादू हो रहा था उनके हाथ से ना, बहुत ग्रंथ वितरण किया। तो वही कैसे भगवान बुद्धि देते, वो उनको पूछा मैंने आप क्या बोलते इतना धड़ाधड़ ग्रंथ दे रहे आप, कुछ नहीं बोला मैं, कुछ नहीं बोलता, ऐसा ही कि ले लो ग्रंथ, लेकिन भगवान कैसे परफेक्ट, वो जो वाक्य है जब आप बोलते हैं ना तो वो परफेक्ट आना चाहिए, वो भगवान बुद्धि देते। क्योंकि इधर बुद्धि की बात चल रही है इसलिए मैं जोड़ पाया जरा थोड़ा इस तरह से भगवान हमारे, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े भक्तों को बुद्धि देते, हमको भी अगर हमारी प्रामाणिक इच्छा है तो हमको भी बुद्धि देते। तो इस तरह से ये जो बुद्धि है हमारे भक्तिमय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भक्त के जीवन में जो जीव भक्त है वो भगवान को शरण जा रहा है उसको 4 तरह से बुद्धि मदद करती है, वो भूमिका निभाती है। एक तो है कि अपने मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि मदद करती है हमको, दूसरा है शास्त्र में जो मिसकंसेप्शन यानी वो कर्मकांड है ज्ञानकांड है उससे बाहर निकलने के लिए हमको मदद करती है, तीसरा है विवेक बुद्धि विवेक प्रदान करती है हमको कि ये सही है ये गलत है, और चौथा है कि हम बुद्धि के मदद से एकदम योजनाबद्ध तरीके से सिस्टमेटिकली एकदम भगवान की सेवा कर सकते, भगवान को ढूंढ सकते, भगवान की भक्ति कर सकते। तो इस तरह से ये 4 के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो मन है जैसे भगवद गीता के 3रे अध्याय में 36 नंबर श्लोक में अर्जुन पूछते हैं भगवान को कि क्यों ऐसा होता है भगवान के कोई व्यक्ति उसकी इच्छा ना होते हुए भी पाप करता है, तो भगवान आगे बोलते काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण सब उद्भव। उसके बाद भगवान बोलते कि ये काम की वजह से आदमी विवश हो जाता है व्यक्ति, और उसको पता होता है ये गलत है इससे मेरा जीवन उध्वस्त हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो काम इतना प्रभावशाली होता है वो प्रैक्टिकली खींच के लेके जाता है किसी व्यक्ति को और वो पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। तो इसलिए भगवान आगे केवल बताते हैं अर्जुन पूछते तो, लेकिन आगे उसका उपाय भी बताते, उपाय में भगवान बोलते कि काम किधर किधर है, उसमें भगवान बोलते कि इंद्रियानि मनो बुद्धिर अधिष्ठानम उच्चते, के ये काम किधर किधर है, आपकी इंद्रिय मन और बुद्धि ये काम की जगह है। और एक बार मन जो है इंद्रियों का स्वामी है, एक बार मन आपका आकर्षित हो गया तो मन अलग अलग कल्पना करना लगता है, उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद जो कामुक बुद्धि है, जो दूषित बुद्धि है, उसका कैपिटल, उसका भांडवल बन जाती है ना, और सब मिलके बाद में वो मोह में पड़ जाता है जीव, और वो मोह में पड़ने के बाद वो पाप वृत्त कर देता है। तो भगवान बोलते हैं कि आप बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, एक्चुअली मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, तो आप बुद्धि के सहायता से मन को नियंत्रित कर सकते। तो बुद्धि कैसे श्रेष्ठ है, तो राधेश्याम प्रभु एक लेक्चर में बताते हैं, इसी श्लोक पर राधेश्याम प्रभु का लेक्चर है, तो उन्होंने एकदम अच्छा बताया। राधेश्याम प्रभु बोले कि काम जो है, जो इंद्रिया है वो क्यों श्रेष्ठ जड़ पदार्थ थे, क्योंकि वो इंद्रिय के मार्फत जो काम को ये रास्ता दिया जाता है। बाद में मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि मन क्या है, इंद्रिया तो सोने के बाद बंद हो जाती है लेकिन मन चलता रहता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। बाद में मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि मन क्या है, अगर समझो हम गुलाब जाम खा रहे, खाओ खाओ और चाहिए, खाओ खाते ही रहो, सोचेगा नहीं कि आगे जाके तकलीफ होगा, आने दो आने दो। लेकिन बुद्धि क्या कहती है, ज्यादा मत खाओ, ज्यादा खाओगे तो जुलाब दिख जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ये बुद्धि तय करती है, इसलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। इसलिए बुद्धि क्या करती है, बुद्धि निर्णय लेती है क्या सही है क्या गलत, इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो इस तरह से जब हमारी बुद्धि दूषित रहती है तो हमारे हृदय में, हमारे मन में गलत गलत जो इच्छाएं आती है उसको मदद करती है वो। लेकिन हम अगर ये बुद्धि भगवान की सेवा में लगेंगे, जैसे हमको सबको पता है ABCD उसमें लगाएंगे, तो वो बुद्धि को क्या आ जाएगा, एक तरह से धार आ जाएगा, फिर वो काट सकती हो, गलत विचारों को काट सकती है। लेकिन वो परपोट में प्रभुपाद एक वार्निंग देते, ठीक है आप शास्त्र का पठन करने के बाद बुद्धि को नियंत्रित कर सकते, बुद्धि हम नियंत्रित कर सकते मतलब उसको हमारे जो विचार है वो भगवान की सेवा में लगा सकते है ना थोड़ा बहुत। लेकिन प्रभुपाद बोले फिर भी अगर आपने भगवान की सेवा में लगा भी दिया, भगवान के स्मरण में लगा दिया बुद्धि को, फिर भी अगर कृष्ण भावना में अगर हम दृढ़ नहीं रहेंगे तो बुद्धि, क्योंकि वो मन इतना प्रक्षुब्ध होता है कभी कभी, तो वो बुद्धि को क्या कर देता है, विवश, बुद्धि को भी काम चलता नहीं कभी कभी। जैसे राधेश्याम प्रभु उदाहरण देते, बहुत अच्छा उदाहरण देते, अभी कार ड्राइविंग कर रहे और उसके बाजू में एक ड्राइवर है, कार चला रहा है, उसके बाजू में उसका दोस्त बैठा है ना, समझो कार ड्राइवर है वो बुद्धि है और ये बाजू में बैठा है वो मन है ना। तो ड्राइविंग कर रहा है, उसके हाथ में कुछ है क्या, वो साइड में बैठा, उसके हाथ में गाड़ी का कंट्रोल कुछ है नहीं, लेकिन वो क्या करता है, वो मन है, अभी गाड़ी चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, अरे पोस्टर पोस्टर पोस्टर, तो वो चलाने वाला किधर है किधर, ताकि एक्सीडेंट हो जाता। इस तरह से मन क्या करता है, उसमें है नहीं शक्ति, लेकिन वो विचलित कर देता है, बुद्धि को विचलित कर देता है। इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आपने कृष्ण भावना में अगर स्ट्रांग दृढ़ नहीं रहेंगे आप, तो वो बुद्धि को भी मन आपका विचलित कर देगा। और इसका उदाहरण है अजामिल, अजामिल का वर्णन ऐसा आता है, बहुत बहुत गुण है उनके, मैंने इतना डिटेल में पहली बार पढ़ा, वो श्लोक पढ़ता हूं मैं। जैसे अजामिल का उदाहरण बताया है कि अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय द्रुत व्रतो मृदुर्दान्ते सत्यवाड़मय मंत्र विचुची। उसके अलग अलग अजामिल की क्वालिफिकेशन बताइए, वो क्या था, श्रुत संपन्न था, मतलब बताया कि वैदिक ज्ञान में एकदम सुशिक्षित था, पूरा श्रुति का ज्ञान था उसको। बाद में शील बताया उसको, अच्छे चरित्र वाला था। बाद में उसके गुण, अच्छे गुण वाला था, आलय अच्छे गुण का आगार था, केवल अच्छे गुण नहीं थे, आगार बोला है कि उससे वो पूरा आगार था। वैदिक शास्त्र संपन्न करने में एकदम दृढ़ था, द्रुत व्रत ऐसा बोला, द्रुत व्रत
मतलब वैदिक शास्त्रों को संपन्न करने में दृढ़ था। बाद में मृदु बताया, मतलब अत्यंत विनीत था। दांत, ये नारद मुनि के बारे में भी वर्णन आता है भागवतम में। दांत मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने वाला था। बाद में और एक क्वालिटी बताई उसकी, सत्यवाक, सदैव सत्यवादी, सत्यव्रती। और बाद में मंत्रविद, मतलब वैदिक मंत्रों के उच्चारण की विधि को जानने वाला। शुचि, सदैव स्वच्छ, अत्यंत स्वच्छ है, केवल स्वच्छ नहीं अत्यंत स्वच्छ बताए। बाद में अग्नि, अतिथि, अतिथि वृद्धा नाम, मैंने घर के बड़े बूढ़ों का आदर पूर्वक सेवा में लगा रहने वाला। बाद में गर्व की झूठी प्रतिष्ठा से रहित था। सर्वभूत सुहृद, सारे जीवों का मित्र, साधु, अच्छे स्वभाव वाला, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं निकाल सकता था। मितवाक, बात करने के समय यह ध्यान रखने वाला कि व्यर्थ की बातें ना बोली जाए। और अनसूयक, ईर्षा रहित। इतने सारे गुण बताए अजामिल के, इतने सारे गुण अगर हमने सोचा हमारे हमारी तुलना की तो इसमें से एक भी नहीं है हमारे पास। तो ऐसा अजामिल सिंपल नहीं था वो, इतना सारे गुणों से ये था वो। लेकिन फिर भी एक दिन वो जाता है फूल लाने के लिए, तो एक वेश्या को देखता है तो वो विचलित हो जाता है। तो उस वक्त का भी वर्णन है भागवतम में कि इतना शक्तिशाली था वो अजामिल, फिर भी उस टाइम पे जब उसने वो जो दृश्य देखा वेश्या को आलिंगन करते हुए, तो कहा गया है कि स्तंभयन, वो अपने मन को वश करने का प्रयत्न कर रहा था और सब याद कर रहा था वो कि मुझे ये गलत जो दृश्य है वो नहीं देखना चाहिए। वैदिक मंत्र को याद कर रहा था, बहुत शक्ति लगा रहा था बुद्धि से, बहुत अभिबुद्धि में है ना ये सब, इतनी शक्ति लगा रहा था। लेकिन उसकी बुद्धि उस समय उसको मदद नहीं कर पाई, बिल्कुल नहीं कर पाई। और बाद में उसका पतन हो गया है ना, हम देखते हैं बाद में वो वैश्य को वो घर लेके आता है। तो इधर हम क्या देखते हैं, अजामिल इतना श्रुति संपन्न था, सारे वेद उसको याद थे, फिर भी उसकी बुद्धि उसको मन को नियंत्रण करने में मदद नहीं कर पाई। तो प्रभुपाद उधर परपोट में बोलते हैं कि जब ऐसा होता है ना कि अपनी बुद्धि, हमको इतना सब हमको पता है और बुद्धि हमको मदद नहीं कर पाती, तो हमको एक स्टेप आगे जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक स्टेप आगे जाके हमको हमारे आत्मा की मदद लेनी चाहिए और आत्मा के मदद से बुद्धि को नियंत्रण करना चाहिए। मदद यानी आत्मा को भगवान की अगर अच्छी सेवा में लगाएंगे तो बुद्धि को, वो बुद्धि को भी क्या करेंगे, वो नियंत्रण। और बुद्धि इतनी शक्तिशाली होगी कि आप ऐसे स्थिति में आपका मन आपको विचलित नहीं कर पाएगा। इस तरह से मतलब क्या हुआ, जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्रील प्रभुपाद की। मतलब क्या है, आप अगर अपनी आत्मा को बुद्धि से भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन, बुद्धि और इंद्रिया सब लाइन से आते। तो बुद्धि, केवल बुद्धि से शास्त्र के मंत्र हमको पता है, सब पता है बुद्धि से हमको, फिर भी वो बुद्धि हमारी मदद नहीं कर सकती है जब तक उसको आत्मा की मदद नहीं मिलती, जब तक उसको एक भगवत भावना भावित जो आत्मा है उसकी मदद नहीं मिलती, तब तक बुद्धि आपको मदद नहीं कर सकती। जैसे एक तुलना करेंगे हम, देखो हरि नाम और वैदिक मंत्रों में तुलना। देखो अजामिल ने केवल एक बार केवल वो दृश्य देखा था, उसका पतन हो गया, और केवल एक बार हरि नाम लिया तो क्या विष्णु दूत आ गए, एक एक बार है ना। देखो वैदिक मंत्रों और हरि नाम में फर्क, जैसे एक बार वेश्या को देखिए, जब वो वेश्या को देख रहा था ना, अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनो, जब वो प्रसंग में वेश्या को देख रहा था तो उस समय वो बहुत सारे वैदिक मंत्र याद कर रहा था, लेकिन फिर भी उस समय उसका मन उसको नियंत्रित कर रहा था, समझ रहे ना आप, उस मन के अंडर था, पूरा मन के कंट्रोल के अंडर था वो, है ना। तो इस तरह से एक बार वेश्या को देख लिया उसने तो उसको लेने के लिए तीन दूत आ गए, यमदूत, और एक बार उन्होंने भगवान का नाम लिया, वो भी अपने बच्चे को बुला रहा था, तो चार विष्णु दूत आ गए, है ना। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार भगवान का नाम लिया तो चार विष्णु दूत बचाने के लिए आ गए, और एक बार उसने केवल वो गलत दृश्य देखा तो तीन हिमदूत आ गए, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शास्त्र का अभ्यास करके जो बुद्धि शक्तिशाली बनती है, वो बुद्धि से शक्तिशाली वो बुद्धि है जो भगवान का हरि नाम लेके शक्तिशाली बनती है। समझ रहे क्या? है ना, क्योंकि एक हरि नाम से चार विष्णु दूत आ गए, है ना, और उनको बचा के लेके भी गए, वो यमदूतों को हरा भी दिया, चुप बैठो आप नहीं ले जा सकते। इस तरह से बुद्धि जो है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए और आत्मा भी भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इस तरह से हम देख सकते हैं। और दूसरा है कि ये तो पहला हो गया, हम इस तरह से इसलिए हमको हमारे मन को भगवान की सेवा में, हमारे आत्मा को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, मतलब हमको खुद को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो हम हमारी बुद्धि हमारी इंद्रिया और हमारा मन पूरी तरह से हमारे वश में रहेगा। और दूसरा है कि बुद्धि जो है हमको शास्त्र में अलग अलग दिया है, कर्मकांड दिया है, ज्ञानकांड दिया है। जैसे कुछ लोग हम डिस्ट्रिक्शन जाते, कुछ लोग वेद मांगते, अभी वेद में है क्या? वेद में भगवान का ज्यादा वर्णन नहीं है। वेद में कभी कभी आता है कि भगवान भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा बहुत देर के बाद आता है ऐसा वर्णन, लेकिन वेदों में सब दिया है कि आपको स्वर्ग जाना है ये पूजा करो, आपको अच्छी पत्नी चाहिए इसकी पूजा करो, और उसके मंत्र दिए, उसका यज्ञ दिया है, ये सब वेदों में दिया है। तो वेद क्या है? वेद जो है वेदों में ज्ञान कांड कर्म कांड इसका ही वर्णन आता है। तो बहुत बार लोग भ्रमित हो जाते हैं कि करना क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, समझ में नहीं आता है। लेकिन बुद्धि की सहायता से हम ये कर्म कांड ज्ञान कांड से बाहर निकल सकते। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, यदा ते मोहक लीलम बुद्धि व्यतिर रिष्यति तदा गंतांसी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो आपकी बुद्धि ये मोहरूपी घनदाट जंगल है अरण्य, मतलब मोह क्या है, ये ज्ञान कांड कर्म कांड, ये मोहरूपी जो घनदाट अरण्य, जो जैसे बोला है ना वेदों में यामिमाम पुष्पिताम वाचाम, बहुत अलग अलग तरह से वेदों में वर्णन किया है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, तो ये फ्लावरी लैंग्वेज है, उससे लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि सोच सकती है कि ये मुझे सुखी नहीं कर सकता है, तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि अगर आपको पता चला कि ये केवल मोहित करने वाला, ये परमानेंट चलने वाला नहीं है, तो आपकी बुद्धि के मदद से आप इससे बाहर आ सकते हैं। तो बुद्धि हमको मदद कर करती है ज्ञान कांड कर्म कांड ये मोह रूपी भाषा से बाहर करने के लिए। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि व्यवसाय तमिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो व्यवसाय नाम। जो लोग भक्ति मार्ग में है उनकी बुद्धि एकदम शार्प पिन पॉइंटेड है ना, उनको केवल भक्ति मार्ग ही करते। लेकिन जो भक्ति नहीं करते, जो लोग ज्ञान कांड में है कर्म कांड करते है, वो लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह मोहित हो जाते। लेकिन अगर बुद्धि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी बुद्धि हमको बचा सकती है, वो उससे मोहित नहीं होंगे। इसका उदाहरण क्या है, इसके नई मैं शारण्य के ऋषि है जो दुनिया के कल्याण के लिए बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, है ना, 1000 साल चलने वाला था यज्ञ। किसके लिए कर रहे थे वो? हालांकि खुद के लिए नहीं कर रहे थे, सब दुनिया के कल्याण लोगों के कल्याण के लिए कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका परिणाम हुआ केवल उनके शरीर मुख काले हो गए, है ना, उनको कुछ नहीं मिला। बाद में परेशान हो जाते हैं, फिर शुद्ध गोस्वामी को बुलाते हो कि आप आ जाओ और हमको कृष्ण कथा बताओ, क्योंकि ये यज्ञ की ऐसा चीज है पता नहीं कितने दिन चलने वाला। और प्रभुपाद उदाहरण देते, जैसे आप खेती में धान बोएंगे तो वो किसके ऊपर है, बारिश के ऊपर है, और बारिश क्या है, हमारे कर्म के ऊपर है, जैसे हम यज्ञ करेंगे उसके ऊपर है। तो खेती में अनाज बोएंगे तो कब आएगा पता नहीं, उसका गारंटी नहीं है, बारिश आए तो आए, नहीं तो आएगा ही नहीं। इसी तरह से हम ये यज्ञ में लगे हैं, लेकिन इसका जो यश है हमारे हाथ में नहीं, पता नहीं कितने साल इसका फल मिलने के लगेंगे, हमको पता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप हमको भगवान की कथा सुनाओ। तो बाद में उनको बुद्धि आ जाती है, सुत गोस्वामी को बुलाते हैं और वो भागवत कथा का आरंभ कर कर्मकांड छोड़ देते हो, और बाद में भक्ति मार्ग में लगते और भगवान के बारे में सुनने लगते। और एक उदाहरण है ब्राह्मण पत्नियों का, वामन पत्नी जैसे उनके पति थे, वो क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। इतना धुआधार यज्ञ कर रहे थे कि भगवान आ गए खुद मांगने के लिए, अरे मुझे कुछ दो। तो भगवान को भी पहचान नहीं पाए, वो बोले नहीं है इधर, टाइम नहीं है, है ना। और भगवान को भी उन्होंने दीक्षा नहीं, ये भिक्षा नहीं दिया, इतना धुआधार यज्ञ कर रहे थे इतना। तो इस तरह से वो भूल गए। बाद में जब भगवान उनकी पत्नियों के पास को बाल, उनके ग्वाल बालों को भेज दे, तो पत्नी, उनके पत्नियों की बुद्धि पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगी थी, इसलिए वो मोहित नहीं हुए। उनके पति मोहित हो गए, क्योंकि वो बताया ना, वो कर्म कांड में लगे थे इसलिए मोहित हो गए। लेकिन उनकी पत्नियां भगवान की सेवा में लगी थी इसलिए मोहित नहीं। जैसे ही ग्वाल बाल आ गए, जितना घर में था उन्होंने क्या कर दिया, उनको दे दिया इस तरह से। और बाद में जब ब्राह्मणों को पता चलता है कि हमारे पत्नियों को कृपा मिल गई, हम इधर इतने दिन से ओम स्वाहा करते बैठे, लेकिन हम इतने दूर थे, तो बाद में वो क्या करते, पश्चाताप। तो क्या बोलते, धिक्कार है, क्या क्या धिक्कार किया है देखो, उन्होंने मैं पढ़ता हूं किस किस का धिक्कार किया। बोलते धिक्कार है, धिक जन्म, हमारे जन्म के ऊपर धिक्कार है हमारा। अभी देखो कुल के ऊपर हमको अभिमान रहता है ना, तो ये बोल रहे धिक्कार है उसके ऊपर हमको। बाद में बोलते धिक व्रतम, हमारा जो व्रत है उसके का भी धिक्कार है। बाद में बोलते कि हम बहुत ज्ञानम यानी अपार विद्वत्ता, उसका भी धिक्कार है। धिक कुलम, हमारे कुल का भी धिक्कार है। आगे जाके बोलते धिक क्रिया, यानी हमारे क्या है, कर्मकांड, हमारा जो दक्षता है कर्मकांड में दक्षता पर रखने, उसका भी धिक्कार है। सबका धिक्कार करते हो, और बोलते कि हमारा कुछ फायदा नहीं हमारे जीवन का, हमने भगवान को ही यहां से भिक्षा नहीं दिया। वो उनके तीन जन्म है ना, एक शारीरिक जन्म, एक ब्राह्मण दीक्षा का जन्म, और वैदिक यज्ञ करने के लिए एक दीक्षा होता है, वो तीनों जन्म का भी धिक्कार है। ऐसे केवल धिक्कार करते बैठे रहे। इस तरह से अगर बुद्धि हमारे हमने भगवान की सेवा में लगा दी, तो ये बुद्धि हमको कर्मकांड से, ज्ञान कांड से आसानी से बचा के लेके, हम आसानी से फंस नहीं सकते उसमें, हम भगवान की सेवा में लगेंगे। अभी लास्ट में, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, बुद्धि हमको विवेक प्रदान करती है, विवेक, जैसे क्या सही है क्या गलत है ये प्रदान करती है बुद्धि। जैसे अवधूत ब्राह्मण बताते हैं, एक श्लोक है 11.7.20 11वें स्कंद में, उसमें अवधूत ब्राह्मण बोलते हैं कि जो व्यक्ति है बुद्धिमान है, वो इस दुनिया को देख के पता चलता है उसको कि क्या करना है क्या नहीं, वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई वरिष्ठ बुद्धिमत्ता है, और समझ जाता है भगवान है, और इस तरह से वो भगवान की सेवा करता है। तो ऐसा जब वो बुद्धि से सोचता है, तो बुद्धि उसकी गुरु बन जाती है। क्या बन जाती है, बुद्धि उसकी गुरु बन जाती है, बुद्धि। तो इस तरह से वो अपने आप को बचा सकता है, और भगवान की वो सोचता है कि अरे ये अलग अलग विविधता है, और मैं इतना सोच पा रहा हूं, मेरी बुद्धि इतनी है पावरफुल है, इतना सोच पा रही, मतलब ये बुद्धि बनाने वाला भी कोई तो है। तो इस तरह से बुद्धि से विश्लेषण करता है वो, और अपने बुद्धि से विश्लेषण करके वो भगवान की सेवा में लग जाता है बाद में। तो उस तात्पर्य में, वो तात्पर्य हृदयनंद महाराज ने लिखा है, वो बोलते हैं कोई सोचेगा अरे बुद्धि अगर गुरु बन गई तो गुरु बनाने की क्या जरूरत है फिर, ऐसा कोई सोच सकता है, ये परपोट बढ़ गए, ये श्लोक बढ़ गया, अरे बुद्धि गुरु बन जाती है तो अलग गुरु बनाने की जरूरत क्या है। तो उधर हृदयनंद महाराज जो है वो जीव गोस्वामी को कोट करते, तो जीव गोस्वामी ने बताया कि गुरु अनुसरणे प्रवर्तक इति अर्थ, मतलब उसको बोलते जीव गोस्वामी कि जब व्यक्ति बुद्धि से विश्लेषण करता है क्या गलत है क्या सही है, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ले वही बुद्धि उसको गुरु के शरण में जाने के लिए मदद करती है। सिंपल है, देखो ना, अगर वो बुद्धि से आप सोचता है वो कि मुझे भगवान की सेवा, भगवान है, ये जो चल रहा है जादू से नहीं चल रहा है, भगवान है, तो वो बुद्धि से सोचेगा ना कि भगवान है तो उनको प्राप्त करने के लिए कुछ रास्ता भी होगा, रास्ता है तो उधर जाने के लिए कोई मार्गदर्शक भी होगा, मार्गदर्शक है तो उसको शरण भी जाना पड़ेगा, वो इतना तो सोचेगा ना, है ना। तो इस तरह से वही बुद्धि, जीव गोस्वामी कहते हैं कि बुद्धि गुरु बन जाती है, लेकिन वही बुद्धि आपको गुरु को शरण जाने के लिए प्रेरणा देती है। इसलिए बुद्धि गुरु बन जाती है, मतलब बाहर से गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बुद्धि आपको मदद करती है एक्चुअली कि आप गुरु स्वीकार करो। इस तरह से जो बुद्धि है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, वो हमको बहुत मदद करती है। लेकिन वो बुद्धि को आत्मा की जरूरत है, जो भक्त है आत्मा, फिर वो बुद्धि शक्ति से काम कर सकती है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। निधाय गौर प्रेमानंदे।